नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी इसके फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि। पिछले लगभग दो महीने से भी ज्यादा समय से मैं समझता हूं आज हम अपना 80th एपिसोड आपसे बातचीत का जारी रख रहे हैं, तो मैं समझता हूं 80 एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है और आप सभी दोस्त हर दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हर दिन सवाल जवाब पूछते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस रहा है ये मेरे लिए भी। और दोस्तों, बी द चेंज सीरीज की शुरुआत एक छोटे से पहल के साथ ये की गई थी कि ये जो बदलाव का समय है, चैलेंजिंग टाइम्स हैं, इन टेस्टिंग टाइम्स में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर आप दोस्तों को कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है या स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, तो इन मुश्किल घड़ियों में हम ब्रह्मा कुमारी की तरफ से स्पिरिचुअल विजडम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इस कॉल को समझते हुए ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों ने इस मौके को आंसर किया और आपके कॉल्स को आंसर किया, जहां पर आपके सवालों को समाधान देने के लिए, आपके मन में जो शंकाएं हैं उन्हें शांत करने की कोशिश की और उनके जीवन के राजयोग के गहन अभ्यास से और उनके जीवन के अध्यात्म के अनुभवों से हमारे साथ हमारे प्रश्नों के लिए उत्तर उन्होंने दिए हैं। और आज भी हमारे साथ हर दिन की तरह एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं, जिन्होंने अनेकों दशकों के साथ ब्रह्मा कुमारी के साथ उनका जो जुड़ाव है, ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को अग्रसर करने में, उन सेवाओं को बढ़ाने में जिनका बहुमूल्य योगदान है, ऐसे एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम के रूप में ब्रह्मा कुमारी शीला दीदी जी गुवाहाटी से जुड़े हैं, जो सब जोन इंचार्ज हैं नॉर्थ ईस्ट के ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं के। मैं दीदी जी का आप सभी की तरफ से स्वागत करता हूं। दीदी, वेलकम है आपका, स्वागत करता हूं आपका। दीदी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़े दोस्तों के लिए इंस्ट्रक्शंस दे देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं तो आप अपने सवालों को सीधे लाइव पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लाइव है तो दीदी हमारे साथ रूबरू हैं और आप उनसे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके कमेंट्स को यहाँ कमेंट सेक्शन में डालिए, अपने प्रश्नों को पूछिए। अगर आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो आप सिर्फ ये भी शेयर कर सकते हैं कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कोई ख्याल है जो आप बताना चाहते हैं तो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। अगर आप हमें कोई शाउट आउट देना चाहते हैं, सिर्फ बताना चाहते हैं कि आप सुन रहे हैं या आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो भी आप कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखें और हम टाइम टू टाइम आप स्क्रीन पर उन चीजों को देख पाएंगे, हम स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न कल के सवालों से है दीदी, जो कल हमारे दोस्त थे जिनके उत्तर हम नहीं दे पाए थे, उनमें से एक दोस्त थे शुभा और वे पूछती हैं, हाउ टू नो अबाउट अवर सेल्फ बेटर, व्हाट वी वांट एंड व्हाट टू डू इन आवर लाइफ। इनका प्रश्न है कि हम अपने बारे में बेहतर कैसे समझें, ये कैसे समझें कि हमें क्या चाहिए और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये प्रश्न पूछते हैं शुभा।
नमस्ते शोभा बहन, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने आप को पहचानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। जब आप अपने आप को पहचान पाएंगी कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा। हाँ, जब तक मुझे ये शरीर मिला है तब तक मैं अपने कर्मों को अच्छा बनाऊं, अपने ऊपर ध्यान दूं, अपने सोच को पॉजिटिव बनाऊं। तो मैं समझती हूँ कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकती हैं। दूसरी बात, जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक अध्यात्म का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिकता ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को अच्छा बना देती है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। शोभा बहन, आप सुन रहे हो ना, देखिए मेरा अपना ही अनुभव है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अध्यात्म ऐसी चीज है जिसमें कोई पूजा पाठ नहीं करना है, पर मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जब हम मेडिटेशन सीख लेते हैं ना, और मन को एकाग्र करते हैं तो बहुत जीवन में आनंद आ जाता है, बहुत आनंद आता है। हमको लगता है कि हमारे जैसा सुखी कोई और नहीं बन सकता है, मैं बहुत सुखी हूँ। क्योंकि मेडिटेशन के अंदर हम सुख के सागर जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनको याद करते हैं, उनसे अपने मन का जोड़ जोड़ते हैं, तो क्या होता है, उनसे हमें एक प्राप्ति होती है और उस प्राप्ति के आधार से हम अपने जीवन को सुखमय, जीवन को बेहतर बना लेते हैं। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाया है। तो मैं समझती हूँ शोभा बहन, आप भी अगर अध्यात्म से जुड़ जाएं, मेडिटेशन सीख लें, तो आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा। अपने आप में आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आपका सोच अच्छा जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। इसलिए आपको अपने जीवन को चिंता नहीं करनी है, बहुत सोचना नहीं है, लेकिन प्रभु चिंतन के अंदर मन को लगा लेना है, ऑटोमेटिक आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इस प्रभु चिंतन करने में, न कोई आपको आसन लगाना पड़ेगा, न आपको कोई प्राणायाम करना पड़ेगा, बस मन को लगाना है, मन को लगाना है। जैसे एक प्रेमी के साथ मन जब जुट जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक लग जाता है। इसी तरह से प्रभु के साथ प्रेम जोड़ लेने से हमारा जीवन बहुत बेहतर बन जाता है। तो आप अध्यात्म से जुड़िए और अध्यात्म हमारे को प्रभु से प्रेम करना सिखाता है, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हम बचपन से इसमें जुड़े हैं, हमने देखा ये जीवन कितना बेहतर है, इतना बेहतर है, और आप जैसे प्रवृत्ति वाले भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बड़ा बेहतर बनाया है, आप भी बना सकती हो, ये मेरी आशा है, ये मेरी आपके प्रति शुभ भावना है। आप जरूर अध्यात्म से जुड़ेंगे और जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, ठीक है, मंजूर है ना आपको, ऐसा मंजूर करना, आप करना, कोशिश करना, आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ ब्रह्मा कुमारी का विश्वविद्यालय है, आप जरूर वहाँ जाएं और जाकर आप लाभ लेंगे तो देखेंगे आपका जीवन कितना अच्छा बन जाता है। लाखों भाई बहने अपने प्रवृत्ति में रहकर ऐसा अनुभव कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, ठीक है ना शोभा बहन, करना आप जरूर से, ठीक है।
थैंक यू दीदी, और उनका जवाब भी आ गया, वो कहते हैं थैंक यू सो मच दीदी जी, मैं राजीव डेली करूंगी और मैं कंटिन्यू करूंगी, ऐसा वो कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपके प्रश्न तो हमारे पास आ ही रहे हैं, जो लाइव हमारे साथ पूछ रहे हैं। कल के कुछ प्रश्नों को मैं पहले ले लेना चाहता हूँ। दीदी प्रतिभा जी ने कल हमसे प्रश्न पूछा था, प्रतिभा जी का प्रश्न है, मेरा बेटा क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है और उसके पिताजी उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो मेरे बेटे को क्या करना चाहिए? अक्सर ये बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि पेरेंट के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं और बच्चों के इंटरेस्ट अलग होते हैं, तो एक टेंशन सा माहौल हो जाता है घर में, तो उनके मदर हैं प्रतिभा जी, तो वो ये प्रश्न पूछते हैं।
नमस्ते प्रतिभा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान समय ऐसा समय चल रहा है जो कलयुग का समय है, ऐसे समय पर किसी भी कार्य में जिद करना शोभा नहीं देता है। अगर मेरे विचार में आपका बेटा क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है तो उसमें वो कामयाब हो जाएगा, आप जबरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहेंगे वो बन नहीं पाएगा। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण आए हैं, कई उदाहरण आए हैं, जो उन्होंने जिद किया उससे क्या किया, बेटा निराश हो गया, बेटा डिप्रेशन में चला गया और दुखी हो गए माँ बाप उसके। तो ऐसा करना बेहतर नहीं होता है। इसलिए आपके प्रति मेरी ये शुभ भावना है कि आप अपने बेटे को या तो पहले समझाइए, समझाइए बहुत प्यार दीजिए, बहुत स्नेह दीजिए, उसे समझाने की कोशिश करिए। अगर वो नहीं मानता है तो मेरा विचार है वो जिस लाइन में जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, उसमें वो सफल होगा और नाम रोशन करेगा। कोई जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर बनकर ही नाम रोशन कर सके, हो सकता वो डॉक्टर बनने में सफल न हो पाए, आगे न बढ़ पाए, उसकी बुद्धि काम न करे। कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं लॉकडाउन में, अभी कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं। वो लोग पढ़ना चाहते नहीं है लेकिन माँ बाप जबरदस्ती करते हैं तो क्या होता है, कई बच्चे तो डिप्रेशन में चले गए हैं और कई बच्चे अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगी प्रतिभा जी, आप क्या चाहेंगी, आपका बेटा डिप्रेशन में जाए अच्छा लगेगा या आपका बेटा सुसाइड कर अच्छा लगेगा? इसीलिए मेरा विचार है आप पहले तो अच्छी तरह से जबरदस्ती ना करके अच्छी तरह से प्रेम से स्नेह से उसके संग व्यवहार करें, उसको उस लाइन में लाने की कोशिश करें कि डॉक्टर बनने से तुमको क्या क्या फायदे होंगे, क्रिकेट तक बनने वाले से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान, मैं क्या चाहती हूँ तुम मेरे बेटा हो, तो मैं मेरे प्रति तुम्हारी ये आशा है तो तुम ये अगर मेरी आशा पूरी करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो यही सोचा है इस तरह से आप प्रतिभा जी अपने बेटे को बहुत प्यार से डील करिए। अगर वो नहीं मानता है फिर भी तो हमारा तो यही विचार है कि उसको क्रिकेट में जाने दीजिए, क्रिकेट में जाने दीजिए, वो आपका नाम रोशन करेगा। कितने क्रिकेटियर हैं आप देखिए, कितना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आता है 10 बरस का, इतना अच्छा फुटबॉल खेलता है, पढ़ाई भी कर रहा है फुटबॉल भी खेल रहा है, भले उसको डॉक्टर बनने की भी इच्छा है लेकिन फुटबॉल में उसको जाने का और ज्यादा इंटरेस्ट है। तो माँ बाप उसे रोक नहीं रहे हैं, तुमको जो करना है करो, अभी से ही जो करना है करो, अगर तुमको फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो फुटबॉल करो, हम लोग चाहते हैं डॉक्टर बनो उसमें इंटरेस्ट है वो करो। फ्रीडम चाहिए जमाने में, अगर फ्रीडम नहीं देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा और आपको दुखी होना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं आप सोच लीजिए, आप अपना निर्णय खुद ले लीजिए। आप बच्चे को बहुत प्रेम से समझाइए, व्यवहार करिए कि भैया मैं ऐसा चाहती हूँ, बेटा ऐसा चाहती हूँ। अगर फिर भी नहीं मानता है उसे जाने दीजिए क्रिकेट के अंदर, फिर देखिए वो कैसा कामयाब होगा, कैसा रोशन नाम करेगा, आपका माँ बाप का नाम रोशन होगा। तो अच्छा होगा या बुरा होगा आप ही सोचिए, ये आपके ऊपर निर्णय है प्रतिभा जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे का जीवन अच्छा बन जाए, बच्चा ना बिगड़े, बच्चा सुधरे, बच्चा अच्छा जीवन बनाए। आप भी तो यही चाहेंगी, आप क्या चाहती हैं, आप क्या बिगाड़ना चाहती हैं क्या बच्चे को, बच्चा डिप्रेशन में चला जाए चाहते हैं, नहीं चाहती है ना, इसीलिए बच्चे की जो आशा पूरी करे तो बहुत अच्छा होगा। मैं समझती हूँ आपको मेरे विचार जरूर पसंद आए होंगे और उस पसंदी से आप अपना निर्णय कर लीजिए, ठीक है ना? ठीक है प्रतिभा जी, फिर मिलेंगे, आप देखिएगा अपना विचार करके कैसा लगता है।
जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके गाइडेंस के लिए। मैं समझता हूँ बहुत सारे माता पिता बच्चों की तरफ से नहीं सोचते कि आज बच्चे फ्रीडम ज्यादा चाहते हैं और ये मॉडर्न टाइम्स हैं और इसके हिसाब से अलग तरीके से हमें ये सोचना चाहिए। बच्चों को समझाना भी है तो ये ऑप्शन भी देना है कि हम आपकी बात सुन भी रहे हैं, ये बताना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। दोस्तों, कल के प्रश्नों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज के प्रश्नों से आज शुरुआत करना चाहता हूँ। ईरा जी हमें फीडबैक भी दे रहे हैं प्रोग्राम में, लोगों को क्या क्या अच्छा लग रहा है वो भी चीजें वो शेयर कर रहे हैं। अमन वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमन जी का प्रश्न फेसबुक से वो हमारे साथ जुड़ते हैं। वो कहते हैं, हेलो दीदी, कैन यू गिव एडवाइस ऑन हाउ टू स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थॉट्स एंड टू अवॉइड एंड ब्लॉक द नेगेटिव थॉट्स। थैंक यू। अमन जी पूछते हैं कि हम अपने दिन को पॉजिटिव थॉट्स के साथ कैसे शुरू कर सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स को कैसे अवॉइड या ब्लॉक कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ एडवाइस दीजिए, ऐसा अमन पूछते हैं।
अमन जी आप बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय तो यही सिखा रहा है कि हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं, निगेटिव से दूर जाएं, ये सिखा रहा है। क्योंकि मन में पॉजिटिव लाने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये है, अच्छी अच्छी पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो निगेटिव थॉट्स हैं वो धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं। अच्छे विचारों में जब हम जाते हैं ऑटोमेटिक हमारे पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन हम किताबें पढ़ेंगे नहीं, निगेटिव बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव कैसे आएगा। आप सोचिए, एक घड़े में पानी डालना है तो एक दिन के पॉजिटिव सोचने से तो नहीं होगा, आप तो बूंद 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 करके डालेंगे तब तो घड़ा भरेगा। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन भी कैसे बनेगा, हम रोज रोज अच्छे विचारों को क्रिएट करें। अब अच्छे विचार क्या है? अच्छे विचार हैं अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है जीवन के अंदर, सुखी मैं कैसे बनूं, ये सब बातें हमारे विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। हम चिंतन करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे अच्छा सोचना चाहिए। जब अच्छे अच्छे विचार लाते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों का संग करते, अच्छे लोगों का संग भी हमारे निगेटिव को दूर कर देता है। कई बार हम ऐसे लोगों का संग कर लेते हैं जो वो निगेटिव खुद भी सोचते हैं और दूसरों को भी निगेटिव बना देते हैं। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, अच्छे किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, घर का माहौल भी अच्छी बातों से क्रिएट करना चाहिए। हम चलो निगेटिव मन में ना आए उसके लिए कोई खेल पाल में अपने आप को बिजी कर ले, कुछ खेल पाल में अपने को बिजी कर लेंगे तो भी मन हमारा उसमें लग जाएगा तो निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नहीं तो निगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, हमारे जीवन को खत्म कर देते हैं। निगेटिव से डिप्रेशन आ जाता है, निगेटिव से लोग अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए आप अपने मन के अंदर पॉजिटिव लाइए, बस कहिए मेरा मन, ये मेरा मन प्रभु का मन है, प्रभु का दिया हुआ मन है, इस मन को मुझे प्रभु में लगाना है, प्रभु में लगाना है। आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी, उसमें लिखा हुआ है मन मनाभव, मन मेरे में लगा ले। बस मन अगर उसमें लग गया, प्रभु चिंतन शुरू हो गया आपका, अच्छी बातों का चिंतन शुरू हो गया, अच्छी पुस्तकें आपने पढ़ने लगे, अच्छे गेम्स खेलने लगे आप, अच्छे अच्छे विचारों में गए, अच्छे लोगों का संग किया आपने, तो आप देखेंगे कि आपका निगेटिव कैसे खत्म हो जाता है। एकदम निगेटिव खत्म हो जाएगा आपको, आपके अंदर निगेटिव आएगा ही नहीं। ऐसे हमारे पास कई लोग आए, हम आपको बताते हैं निगेटिव आने के कारण डिप्रेशन आता है। एक हमारे पास फैमिली थी, एक माता, इतना निगेटिव आता था उसको, अपने बच्चों को भी मैं मार डालू, अपना एक ही बेटा, एक ही बेटा, लेकिन मैं उसको मार डालू, ऐसा उसके अंदर निगेटिव सोचते सोचते डिप्रेशन आ गया। पर जब विश्वविद्यालय से जुड़े, यहाँ की क्लासेस की, उन्होंने सीखा कि नहीं इससे क्या नुकसान हो रहा है, इससे फायदा पॉजिटिव सोचने से होगा मुझे, सीखा उन्होंने, सीखते सीखते आज उनका जीवन बिल्कुल बदल गया और उनका परिवार बड़ा सुखी बन गया। आज उनका परिवार सुखी हो गया, उनकी बेटी ज्ञान में, उनका बेटा भी संबंध में आ गया, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते उसका जीवन भी अच्छा होता जा रहा है, उनकी माँ भी अच्छी होती जा रही है, उन्होंने बहुत अच्छा बाबा को सब कुछ समर्पण किया है, उन्होंने बाबा को ईश्वर को समर्पित किया है। इसीलिए मेरा विचार है कि आप अच्छा संग करिए, आप विश्वविद्यालय में जाइए, आपको सिखाया जाएगा, कोई आपको फीस नहीं लगेगी, कुछ आपको मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ आप जाइए तो एक बार देख लीजिए, सिर्फ एक बार जाने से ही आपका जीवन देखिए कितना अच्छा बन जाएगा और आप सोचेंगे वाह मैंने तो अपना समय यूं ही वेस्ट कर लिया, अच्छा है अब मुझे बहुत अच्छी बातें सीखने मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे रोज अच्छी बातें सिखाई जाती है, रोज सिखाया जाता है, सीखते 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 बूंद बूंद पढ़ते पढ़ते क्या होगा, बुद्धि रूपी जो घड़ा है ना आपका, वो भर जाएगा, आपके विचार इतने अच्छे हो जाएंगे जो आप कहेंगे वाह मेरा जीवन वाह। तो मैं समझती हूँ कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा और आप जरूर पॉजिटिव विचार करते करते अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। मंजूर है ना आपको भाई, मंजूर है तो आपको, अमन भाई नाम था ना शायद, अमन भाई जी पसंद आएगा ना आपको, तो जरूर करना, आप जरूर करके देखो तो सही क्या होता है, एक बार करके अभ्यास करें, अभ्यास से सब कुछ प्राप्ति होती है, अभ्यास तो करें, हम करने में क्या बड़ी बात है, कोई खर्चा नहीं है कुछ नहीं है, आप आराम से करके देखो तो सही, तो वाह आपका जीवन, कहेंगे वाह मेरा जीवन तो इस फेसबुक के ज्ञान से समझ में आ गई और मैं जीवन को अच्छा बना पाया। ठीक है, अच्छा फिर मिलते रहेंगे, जरूर आप जाना, फिर हम मिलेंगे आपसे।
जी थैंक यू दीदी, आपने बहुत ही सुंदर सी बात कही कि भाई हम पॉजिटिव बनने के लिए कुछ पॉजिटिव अंदर डालना जरूरी है, किताबें अच्छी पढ़नी है, अच्छी चीजों पे अगर हमारा ध्यान रहेगा तो पॉजिटिविटी अंदर आएगी। मैं समझता हूँ बहुत सारे दोस्तों को ये चीज अच्छी लगी होगी। एक और दोस्त हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, नाम है इनका बीना, और बीना जी हमसे प्रश्न पूछती हैं कि व्हाई थिंग्स आर रिपोर्टिंग इन पीपल बिहेवियर्स नो मैटर हाउ मच आई चेंज। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बार अपने आप को बदलने की कोशिश करती हूँ और जितना भी मैं बदलती हूँ फिर भी लोग मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, गलत बिहेवियर मेरे को देखना पड़ता है लोगों के साथ, ऐसा बीना जी प्रश्न पूछती है।
ऐसा है बीना जी, ये जमाना कौन सा चल रहा है आप जानती हैं, ये कलयुग का जमाना है और आज इंसान की मनोवृत्ति कैसी हो गई है आप समझ सकते हैं, मनोवृत्ति इतनी खराब हो गई है, विकारों में फंसकर उनके अंदर मन की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं जो एक दूसरे को अच्छा देख नहीं सकते हैं, वो चाहते हैं कि हम अच्छा बने, आप चाहते हैं हम अच्छा रहें, हम किसी का बदला नहीं लें, हम तो बदल रहे हैं लेकिन आपको अच्छा देखना नहीं चाहते हैं। इसका मूल विकार है अंदर में ईर्ष्या, अंदर में उनके ईर्ष्या है आपके प्रति, और ईर्ष्या ऐसी बीमारी है जैसे एक कैंसर का रोग। कैंसर का रोग क्या करता, अंदर 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 घूमता रहता है। तो अमन जी बीना जी ये रोग ऐसा है, इससे आप जितना भी चाहेंगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी बन गई है, ये दुनिया ऐसी बन गई है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसके लिए शुभ भावना देनी है। अच्छा आप बोलते रहो, आप कहते रहो, हम सुनते जाएंगे। मैं तो यही अनुभव करती हूँ, हम कहते हैं किसी ने, भगवान ने हमें एक मुख दिया है बोलने के लिए, बोलने वाले बहुत बोलते जाते हैं, लेकिन भगवान ने हमको दो कान भी दिए हैं, दिए ना दो कान, बोलिए बीना जी दो कान हैं, किस लिए दिए दो कान, एक कान भी दे सकता था भगवान, क्यों दो कान दिए, कभी सोचा, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो जो हमारे मतलब की बात नहीं है, जो हमारे मतलब की बात नहीं है। तो लोग आपको वो आप तो बहुत अपने आप को अच्छा समझ रही है, लोग नहीं समझते हैं, तो कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, इसीलिए आप कुछ इस चिंतन में मत जाइए कि हम तो अच्छे बन रहे हैं लेकिन लोग हमें ऐसा समझते हैं, भाई मैं क्या करूं, ये सोचते सोचते क्या होगा, आपका डिप्रेशन आ जाएगा, इसे ऐसा सोच मत लाइए आप सोचिए मैंने जैसे कहा आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, आपका मित्र आत्मा है खुद जो इस शरीर के अंदर विराजमान है, आत्मा नहीं होगी तो शरीर तो बेकार हो जाएगा आज आपका, तो आत्मा है इसके अंदर, तब तो सोच रहे हैं ना आप, कोई बात नहीं बोलने दो बोलने दो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए आप, अवॉइड करिए आप, और अवॉइड करने की शक्ति मेडिटेशन से आती है, राजयोग का अभ्यास हमको इसके अंदर बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है, आप क्षमा करना सीख जाएंगे, उसको क्षमा कर दो कोई बात नहीं है, उसने बोल दिया तो बोल दिया। जब हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति राजयोग के अभ्यास से आ जाती है ना, तो हम बड़े सुखी बन जाते हैं। ऐसा हम प्रैक्टिकल की बातें बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल की बातें बता रहे हैं। क्षमा करना सीख ले हम, कोई बात नहीं। मेरे तो मेरा कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है? मेरा मन तो कह रहा है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर मैं ठीक हूँ तो फिर मेरे के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मुझे ये ध्यान रखना है, बस मुझे ध्यान रखना अपने ऊपर, न कि किसी के ऊपर। बोलने में कोई बात नहीं है, क्षमा करते जाइए लोगों के ऊपर, क्षमा करते जाइए, तो आप ठीक रहिए। आप खुद को ठीक रखिए, क्योंकि आप दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। कोई ना आपके साथ जाएगा, कोई आपको सहारा देगा। अगर किसी का सहारा आप मांगते हैं तो सोच लीजिए आपका जीवन खोखला बन जाएगा। अगर किसी से उम्मीद रखते हैं आप, तो आप जीवन भर निराशावादी बन जाएंगे। तो न तो किसी से उम्मीद रखिए, न किसी का सहारा ढूंढिए। आप सहारा ढूंढिए एक प्रभु का, एक प्रभु से उम्मीद रखिए। बस जीवन की नैया हमारी वो पार करेगा। हमारा जो भी कोई बदला लेने कोशिश करता है, मुझे देखना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे, कोई साथ नहीं जाने वाला है। इसीलिए घबराना नहीं है आपको, आपको निराश नहीं होना है बीना जी। आप अच्छा कर्म, आप अच्छे कर्म करते जाइए, सबके लिए शुभ भावना देते जाइए, बस आपके विचार अच्छे होंगे। उनकी जो ईर्ष्या है आपके प्रति, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप करके देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव है ऐसे जिन्होंने ऐसे किए, लेकिन आज एकदम बदल गए, बदल गए। ईर्ष्या करना छोड़ करके उन्होंने उनसे मित्रता जोड़ ली है, मित्रता जोड़ ली। इससे आप भी ऐसा करके देखिए। तो मैं समझती हूँ बीना जी, आपको मेरा विचार पसंद आया होगा, जरूर आप इसको करके देखिए, तो आप बहुत खुशी में रहेंगे और आपका जीवन बड़ा सुखमय बन जाएगा। और उससे क्या होगा, आपका परिवार भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है ना बीना जी, करके देखिए आप। ठीक है,
बहुत शुक्रिया दीदी। जैसे आप ये बात कह रहे थे, उसी समय पर हमारे एक और दोस्त ने इससे ही मिलता जुलता प्रश्न पूछा था। सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने प्रश्न पूछा है, मैं अच्छा बनना चाहती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और मेरे को ऐसा महसूस होता है कि गलती हो जाने के बाद क्या करें। और मैं समझता हूँ सुमित्रा जी को भी उनके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया है बीना जी के साथ, कि आप अच्छा बने रहें, आप कोशिश ये करते रहें कि हम फॉरगिव करें दूसरों को, और अगर हमसे कुछ सिर्फ गलती होती है तो वो भी फॉरगिव करना जरूरी होता है। और दीदी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि अगर हम कोई ऐसी गलत चीज सुनते हैं, लोग हमें कुछ सुनाते हैं, तो हमें जज करना है कि चलो ये मेरे काम की चीज नहीं है, तो उस चीज को सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, और जो मेरे फायदे की चीज है, जो मेरे बेनिफिट की चीज है, उन्हीं चीजों को लेना चाहिए। दोस्तों लगभग हम आधे घंटे के समय तक पहुंच गए हैं, और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल लिखकर भेज सकते हैं हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे यहाँ पर, और फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहते हैं जो प्राइवेट है, जहां पर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, उसको गुप्त रखना चाहते हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। पर आप ऐसे प्रश्नों को सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर ईमेल भी कर सकते हैं, तो आपके प्रश्नों को हम दीदी जी से पूछेंगे, बट हम आपके नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दीदी अगला प्रश्न हमारे साथ विपुल कुमार पूछते हैं, और विपुल जी पूछते हैं कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग विच इज इंडीड रिक्वायर्ड बट फॉर अ रीजन नॉट एबल टू, हाउ टू हेल्प आवर सेल्फ विथ डिविएशन। विपुल जी का प्रश्न है, वो कहते हैं कि हम किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, वो हमारे लिए आवश्यक तो है मगर किसी कारणवश हम इस समय पर उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब उस चीज पर कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाए रखें, और अपने आप को डिविएशन से जो हमें डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जो हमें मार्ग से हटाते हैं या हमारा अटेंशन यहाँ वहां ले जाते हैं, उन चीजों से अपने आप को कैसे बचाएं, ऐसा ही पूछते हैं विपुल।
कौन ले जाते हैं उनको मार्ग से अलग? कौन ले जाता
है? कभी कभार ऐसा होता है कि मार्ग से भटक जाते हैं, डिविएशन आ जाते हैं, विचार कहीं कहीं और चले जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते।
हाँ विपुल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर आप देखिए, आपका जीवन तो आप अच्छा बनाना चाहते हो, परंतु आप मार्ग से हट जाते हो, क्योंकि आपके विचार अच्छे नहीं रहते हैं, है ना? आपके विचार अच्छे नहीं रहते हैं, इसीलिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, ठीक है ना? अब मैं आपको बताऊं, कंसंट्रेट करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, आप जबरदस्ती कंसंट्रेट करना चाहेंगे तो उससे क्या होगा, आपका माथा भारी हो जाएगा, आपका माथा भारी हो जाएगा और दिल दिमाग काम नहीं करेगा। इसे जबरदस्ती कोशिश मत करिए आप कंसंट्रेट करने की, आप मेडिटेशन पहले करिए। मेडिटेशन करना सीख लेंगे तो मेरा विचार है विपुल जी कि आपका मन ऑटोमेटिक क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। कंसंट्रेट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका मन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले मेडिटेशन करना सीखा है। आप सोचिए, एक बच्चा है, बच्चे को पहले ए बी सी डी सिखाया जाता है, क ख ग सिखाया जाता है, न कि सीधा आप उसको हाई क्लास का फोर्थ क्लास का क्लास सिखाएंगे तो बेचारा पढ़ सकेगा, आप सोचिए। ठीक इसी तरह से आप सीधा कंसंट्रेशन करना चाहते हैं और मेडिटेशन सीखा ही नहीं आपने, तो भला आपका मन कैसे कंसंट्रेट होगा? सोचिए, होगा कभी नहीं हो सकता है। आप जितना भी कोशिश करिए, तो कंसंट्रेट करने के लिए आपको मेडिटेशन सीखना है। अब मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है अपने को आत्मा निश्चय करके परमात्मा को जानना। आप एक आत्मा ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। जिस तरह से एक तार को तार से जोड़ा जाता है तो लाइट आती है, ठीक इसी तरह से आप आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़िए। उससे आप जब जुड़ेगा तो आपके अंदर एक लाइट आएगी, शक्ति आएगी। धीरे 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 अभ्यास करते करते आपको कंसंट्रेट अपने आप हो जाएगा। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, आप जबरदस्ती करेंगे अगर कंसंट्रेट करने के, पहले से सीधा कंसंट्रेट, तो क्या विपुल जी आपका मन हो सकेगा? कभी नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमको मेडिटेशन सिखाता है। मेडिटेशन हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भगवान की जब प्रार्थना की आपने, स्कूल में पढ़ाई की हम सब ने, तो क्या गाते हैं? तमे माता च पिता त्वमेव, तमे बंधु च सखा त्वमेव, तमे विद्या द्रविणम त्वमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। कहा ना कि परमात्मा ही माता पिता सखा बंधु सब कुछ है हमारे लिए, सब कुछ है। उसके संग पहले आप संबंध जोड़ लीजिए कि वो मेरा पिता है, वो मेरी माँ है, वो मेरा भाई है, मेरा सखा। आप जब संबंध उसके संग जोड़ लेंगे ना, तो वो ही मेडिटेशन है बस। और जब इस तरह का मेडिटेशन हो जाएगा तो आपका प्रेम उससे जुट जाएगा, और जिसके संग प्रेम जुट जाता है उसमें मन अपने आप कंसंट्रेट हो जाता है। उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है कंसंट्रेट करने की, सहज ही मन कंसंट्रेट हो जाता है। इसलिए आप अपने अंदर शुद्ध विचारों को लाइए, आप विचार अच्छे लाइए कि हाँ मुझे अब परमात्मा से प्रेम जोड़ना है, मुझे अपने को आत्मा निश्चय करना है, सारे विश्व के आत्माओं को अपना परिवार समझना है, क्योंकि एक पिता की संतान है हम सब भाई बहने हैं। कहते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है आपस में भाई भाई, तो हम सब भाई भाई हैं आपस के अंदर। जब हमारे विचारों में यह सब आ जाता है तो हमारा मन कंसंट्रेट ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए विपुल जी मेरा ये विचार है आपसे कि आप मेडिटेशन सीखिए। ब्रह्मा कुमारी ये मेडिटेशन सिखाती है, और मेडिटेशन के बाद ये मेरा अपना अनुभव है, कि आप ऑटोमेटिक कंसंट्रेट कर पाएंगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ आपको ये मेरा विचार पसंद आया होगा। आप करके देखिए, करके देखिए, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन करके एक बार देखिए, आप अभ्यास करिए, फिर देखिए आपका मन कंसंट्रेट होता है कि नहीं। तो मेडिटेशन एक ऐसी कला है, ऐसी कला है जिस कला के द्वारा मन ऑटोमेटिक कंसंट्रेट हो जाता है। इसलिए आप ऐसा करके देखिए विपुल भाई जी, करके देखना। आप मेरा ये विचार है आपके लिए, शुभ भावना है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा
जी। बहुत शुक्रिया दीदी। कंसंट्रेशन के बारे में आपने कहा कि मेडिटेशन से हम कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, अगर हम वही नहीं करेंगे तो फिर शायद इस पे पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और एक दूसरे दोस्त ने भी वही प्रश्न पूछा था और उनका भी उत्तर उनको मिल गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत सारे लोग फीडबैक भी दे रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, उनके शाउट आउट्स आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रीति जैन जी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं। प्रीति जी का प्रश्न है, दीदी मुझे लगता है कि अगर मैं न रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये ख्याल निकलता ही नहीं दिमाग से, कृपया बताएं, ऐसा प्रीति जी पूछते हैं। मैं समझता हूँ दीदी सिर्फ प्रीति जी का ही नहीं, जब से ये कोरोना वायरस का भय हुआ है लोगों को, तो लोगों को अपने से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता होने लग गई है और लोगों को डर भी लगने लगता है इस बात से। तो प्रीति जी के प्रश्न के बारे में बताएं।
क्या नाम बताया? निधि?
प्रीति।
रिधि ना निधि? प्रीति जैन।
प्रीति।
प्रीति, अच्छा। प्रीति जी आपका प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। थोड़ा तो पहले मुझे बताइए कि आपको बच्चे किसने दिए, बच्चे देने वाला कौन? जीवन जिसने दिया है संभालेगा वो, जीवन जिसने दिया है संभालेगा वो। तो बच्चे किसके हैं? जब बच्चे हुए तो आपने क्या कहा, भगवान ने दिया है। तो भगवान सबका मालिक है, न कि आप मालिक। आप तो एक निमित्त मात्र हो, आप तो एक उसको संभालने के लिए निमित्त बनी हुई हो, लेकिन बच्चे आपके नहीं, बच्चे भगवान के हैं। तो भगवान ने बच्चा दिया है तो क्या भगवान संभालेगा नहीं? आप ये क्यों चिंता करती हो कि मेरे जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? अरे आपकी ये चिंता बड़ी गलत है। आप ये मत सोचिए, प्रभु ने दिया है, आपने प्रभु की गोद में, आप रोज सोचिए मेरे जाने के बाद, हे प्रभु आप संभालना इनको, क्योंकि आपकी अमानत है ये, आपने दिया है इनको हमको, आपने दिया है हमें संभालने के लिए, तो जरूर आप ही संभालोगे, कौन संभालेगा, आपके जवाबदारी है। प्रभु से ऐसी बात करिए, आप कहिए प्रभु को कि आपकी जवाबदारी है, आपको संभालना होगा, मैं संभालने वाली कौन, क्योंकि आपकी अमानत है, आपने दिया है, क्या आपका है? क्या दुनिया में कौन हमारा है बताइए? आपका शरीर भी आपका नहीं है, है क्या आपका शरीर? आपका आपको शरीर के अंदर आत्मा है, वो पंछी की तरह उड़ जाएगी, पंछी उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा, तो क्या करोगे आप बताओ मेरे को, क्या करोगे आप, कुछ कर सकोगे आप? ये शरीर भी आपका नहीं है। तो जब आपका शरीर नहीं है तो बच्चे आपके कैसे हो गए? बच्चे तो प्रभु ने दिया है ना आपको, तो प्रभु के बच्चे हैं ना वो, तो प्रभु ने दिया है तो प्रभु जरूर संभालेगा या नहीं संभालेगा बताइए आप। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका जवाब खुद दीजिए आप अंदर अंदर, कि भगवान के बच्चे हैं या नहीं है वो? वो भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने आपको दिया है, भगवान संभाल लेगा। आप ये चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप रोज प्रभु से ये बातें करिए कि आपने इनको जीवन दिया है, ये प्रभु आपने दिया है, या आपके बच्चे हैं, मेरे जाने के बाद आपको संभालना है, जीवन जिसने दिया है संभालोगे तुम, है ना? जीवन दिया उसने तो वो संभालेंगे भी ना, वही कौन संभालेगा, वही संभालेगा आपको। इसलिए आप ये चिंता मत करिए, आप ये सोचिए मत, ये सोचना आपका गलत हो रहा है, ये गलत सोच आपको क्या करेगा, दुखी बना रहा है, आपको निराशावादी बना रहा है। आपके मन में सारा दिन वही चिंतन चलता है जिसके जिसका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ रहा है, आपके बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए आप बच्चों को भी प्रभु की याद दिलाते रहिए कि देखो भगवान ने तुमको दिया है, भगवान को याद करो, भगवान तुम सबको खिला रहा है, भगवान ने सब कुछ दिया है। तो बस देखिए बच्चों में भी वही संस्कार पड़ेंगे जो आप सिखाएंगे, जो आप सिखाएंगे। इसीलिए आप ये चिंता प्रीति जी बिल्कुल करना छोड़ दीजिए। मैं समझती हूँ आप जरूर मेरी बात को समझ रहे होंगे कि प्रभु ने दिया है, आपका दिया हुआ है क्या? प्रभु ने दिया ना, भगवान ने दिया है। हम लोग कहते हैं मेरे भगवान ने दिया है, मेरे पास बड़ा अच्छा दिया है, भगवान ने दिया है। तो जब दिया उसने है तो संभालेगा नहीं क्या? वो जरूर संभालेगा, उसकी चीज है वो संभाल लेगा अपने आप। आपकी चीज है कि आपको तो एक नर्स की तरह संभालने दिया है। जैसे एक नर्स हॉस्पिटल में कितना प्यार से संभालती है ना बच्चे को, लेकिन वो क्या समझते मेरी ड्यूटी है। ठीक आप इसी तरह से एक नर्स बन जाइए और नर्स बन करके आप अपने बच्चों को प्यार से संभालिए, अच्छी तरह रखिए आप, क्योंकि आप एक नर्स हैं, आपको प्यार से पालना करनी है न कि चिंता करनी है। बस आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान पे छोड़ दीजिए। तो मैं समझती हूँ प्रीति जी आपको मेरा ये विचार जरूर पसंद आया होगा और आप रोज प्रभु चिंतन करके, प्रभु से ये बात करके प्रभु के ऊपर उनका जीवन सौंप दीजिए। बस सौंप दीजिए उसके ऊपर, फिर आप देखिए कितने आंसू की बन जाएंगे। ठीक है? तो प्रीति जी आप जच रहा है ना, मेरा विचार जच रहा है ना आपको, मैं समझती हूँ आपको जरूर जचा होगा। ठीक है,
बहुत शुक्रिया दीदी। एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया आपने जब ये चीज कही कि हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया है, वो देने वाला है और उसने ही सब कुछ किया है, तो वो जब हमसे करा रहा है तो हम ट्रस्टी होकर, हम ईश्वर पे थोड़ा फेथ रख के वो चीज करेंगे, ईश्वर पे विश्वास रखेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं, सहल हो जाती हैं। अगला प्रश्न मैं पढ़ना चाहता हूँ, बट सुनंदा वर्मा जी एक फीडबैक देती हैं। वो कहते हैं कि जब से वो प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे उनको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उनको बिना पूछे ही मिल रहे हैं। सुनंदा जी कहते हैं, वो कहते हैं कि मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही मिल जाता है, मन अब शांत होता जा रहा है, ऐसा सुनंदा जी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनंदा जी इस फीडबैक के लिए। प्रतीक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से और वो अगला प्रश्न पूछते हैं। दीदी, फैमिली में किसी के लिए हमने बहुत किया है, बट अब अगर वो व्यक्ति धोखा दे और अपनी बात पर न रहे और उसके साथ रहने से मेंटल डिस्टर्बेंस या फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ना हो, तो क्या हमें अलग हो जाना चाहिए? ऐसा ये पूछते हैं प्रतीक शर्मा जी। बोलते हैं ये फेथ से रिलेटेड चीज है कि उन्होंने बहुत किया है किसी सामने वाले के लिए, बट वो अपनी बात पे नहीं टिके रहते, तो उनके साथ रहने में कोई मेंटल डिस्टर्बेंस और फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस अगर ना महसूस हो हमें, तो ऐसे में क्या उनसे दूर हो जाना या अलग हो जाना सही रहेगा, ऐसा पूछते हैं प्रतीक।
ऐसा है प्रतीक जी, हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, लेकिन मेरे साथ वाले अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और ये जैसे कि हमको धोखा जैसा अनुभव हो रहा है कि मैंने तो इनको बहुत अच्छा किया और ये हमें धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये आप एक बात है विशेष, ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आपके अपने कर्म का हिसाब किताब है, अपने कर्मों का हिसाब किताब है। क्योंकि पूर्व जन्म में हमारे साथ उनके संबंध थे और उसी अनुसार अभी हमारे संबंध बने हैं, इसीलिए उस अनुसार हम संबंधों के अंदर चल रहे हैं। हाँ, बात अभी आती है कि हम क्या करें, अलग हो जाएं या नहीं हो जाएं, ये तो है अपने ऊपर डिपेंड। अगर अति होती है तो अति के लिए तो हमें अलग हो जाना ही अच्छा होता है, ताकि आप भी सुखी रहो और वो लोग भी सुखी रहें, जिससे हमें चिंता न रहे, जिससे हमें कष्ट न हो, वो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि हम जितना रहेंगे उनके संग में, आपको ऐसा अनुभव होता रहेगा कि धोखा दे रहे, ये धोखा हमको मिल रहा है, हमसे ये ऐसा कर रहे हैं, तो बार बार वो जो चिंतन है, वो सोच है, तो वो निगेटिव बना देगा आपके अंदर, बहुत निगेटिव आ जाएगा। और वो निगेटिव क्या होगा, वो तो ठीक रहेंगे और आपका जीवन बेकार हो जाए। इसीलिए अलग हो जाना, प्यार से ही अलग हो जाना, प्यार से अलग अच्छा है। आज के जमाने में एक संग कोई रहता ही नहीं है, जमाना ही ऐसा बन गया है, क्योंकि विकारों की प्रधानता हो गई है, सारी दुनिया में तमो प्रधान हो गया है, सारी दुनिया स्वार्थी बन गई है, सब दुनिया स्वार्थी है। आप जिस पर भी भरोसा करोगे वही धोखा देगा, वही धोखा देगा, भरोसा करने से वही धोखा देता है। इसे किसी पर भरोसा भी नहीं करना है, और कितना भी आप अच्छा करेंगे, आज आप किसी का अच्छा करते हैं लेकिन वो समय पर भूल जाता है, अच्छा करना, अच्छा सोचना आपके लिए भूल जाता है। क्योंकि कहते हैं, है मतलब की दुनिया सारी, है मतलब की दुनिया सारी, या कौन किसी का होता है, धोखा वही दे जाते हैं जिस पर की भरोसा होता है। इसलिए आपका काम है, बस आपने अच्छा किया है कोई बात नहीं, आपका अच्छा किया हुआ अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। अच्छे तरह से आप अलग हो जाइए तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, उनका भी अच्छा रहेगा, आपका भी अच्छा रहेगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी, जरूर आप उस विचारों से आप अपने आप को बना पाएंगे, नहीं तो आप खुद ही निराश हो जाएंगे। वो तो अच्छे रहेंगे लेकिन आप निराश हो जाएंगे, आपका जीवन बेकार हो जाएगा। जैसे आपका जीवन आप बेकार न करो, इस सोचिए आपके कोई कर्मों का हिसाब किताब है जो चुकती हो रहा है, अच्छा है, अच्छा है, चुकती हो रहा है तो खुशी खुशी से चुकती करते जाइए, जिसमें आप जीवन सुखी बना सकते। तो मैं समझती हूँ आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत अच्छे बन पाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा आप।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। बहुत बार हम लोगों को खुश करने के लिए लोगों के परवाह करते रहते हैं और लगता है कि भाई ऐसे करने से ही हमें चीज होता है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अंदर से खुश हैं तो फिर हम दूसरों को भी खुशी दे पाते हैं। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम खुशी खुशी एग्री करते हुए सामंजस्य के साथ अगर हम दोनों खुश रहने के लिए कोई मार्ग अपना सकते हैं, अलग अलग होने के बारे में सोच सकते हैं, तो वो कॉर्डियली अगर करना सही है, लड़ाई झगड़ा या किसी और चीज से मनमुटाव से करने से अच्छा है कि कॉर्डियली रिलेशनशिप को अगर हम अलग मोड़ दे सकते हैं और फिर बाद में कॉर्डियली रह सकते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। बहुत ही अच्छा आपने ये चीज समझाया। एक और दोस्त है हमारे जो सवाल पूछ रहे हैं, नाम है इनका इस्पिता दत्ता, और इस्पिता जी सवाल पूछती हैं, इस्पिता नाम है दीदी, और प्रश्न पूछती हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर सही रिजल्ट्स ना मिले तो क्या करना चाहिए, ऐसा ये पूछती हैं।
ऐसा इस्पिता जी, आप करते जाइए, रिजल्ट की आशा मत करें। अगर आप सही रीति से करते जा रहे हैं, कहते जैसे कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ठीक इसी तरह से आप अगर सही रीति से करते जा रहे हैं तो एक न एक दिन सफलता मिल जाएगी। आप रिजल्ट की आशा छोड़ दीजिए, आप करते जाइए। कहते ना, कर भला तो हो भला, अंत भला का भला है। बस आप करते जाइए, करते जाइए, आपके कर्म आपके साथ जाने वाले हैं। आपने जो अच्छा किया है वो आपके साथ जाएगा, इसलिए आप ये चिंता मत करिए कि मैं तो करता तो हूँ बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे संग तो ऐसा ही होता है, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलती है। वही बात है, कभी कभी धरती में जब हम बीज डालते हैं तो क्या होता है, बीज का फल निकलने में कभी कभी थोड़ी देरी हो जाती है, देरी हो जाती है, लेकिन अगर हम तुरंत सोचते अभी क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, तो निराशा आ जाती है। तो हम रिजल्ट की चिंता ना करके हम अपने कर्मों को अच्छा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो आप देखिए एक न एक दिन रिजल्ट आपको मिल जाएगी, एक न एक दिन मिल जाएगी आपको, ये जरूर पक्का है। पर आपको धीरज रखना पड़ेगा, धीरज का गुण बहुत बड़ा गुण है। अगर धैर्यता नहीं आपके जीवन के अंदर तो आप घबरा जाते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ लेकिन क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो मेरे साथ तो होता ही नहीं है ऐसा, मेरी रिजल्ट अच्छी नहीं है, मैं तो इतना कर रहा हूँ कोई मेरे को अच्छा बोलता ही नहीं है। ऐसा होता है ना, कोई मुझे अच्छा बोले हम उसको सुनना चाहते हैं लेकिन अच्छा कोई बोलता ही नहीं है मेरे को, क्या करूं। अब सोचते रहते हम कितना करें, कितना करेंगे, कितना करेंगे। अरे करते जाइए ना, आप करते जाइए, करते जाइए, एक न एक दिन आपको अच्छा बहुत बोलेंगे लोग, बस क्योंकि आपने अच्छे किए हैं, किया हुआ अच्छा फल, बीज बोया हुआ फल आज नहीं तो कल जरूर फल देगा ही देगा। तो रिजल्ट आपको अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, आपकी लोग इतनी महिमा करेंगे आप देखिएगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सोच लीजिए मुझे अच्छे कर्म करने ही, धैर्यता का गुण जीवन के अंदर सफलता प्रदान करता है, इससे धैर्य रखिए तो रिजल्ट अच्छे मिल जाएगा। तो मेरी बात जरूर आपको पसंद आई होगी और आप उसी अनुसार आप जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप करके देखिए, आप धीरज रखिए, सिर्फ केवल देखिए, आप अपने कर्म से मुख मत मोड़िए आप कि मैं कर्म करना छोड़ दूं, आप करते जाइए, कर्म करते जाइए, आपको जरूर फल मिलेगा, मैं गारंटी से बोलती हूँ आपको। पर आपको धीरज रखना, तो जरूर रिजल्ट मिलेगी आपको, ठीक है। आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो आप करके देखना, प्रैक्टिकल।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, और ये बहुत ही अच्छी बात कही, गीता में भी ये चीज कही जाती है कि भाई तुम कर्म करते जाओ और उसके फल की चिंता नहीं करो। और आपने कहा कि भाई आप अच्छा कर्म करते रहेंगे तो उस चीज से उसका रिजल्ट तो निकलता ही है। थोड़ा देर जरूर हो सकता है बट अंधेर नहीं है भगवान के घर में, जैसे आपने कहा ऐसा जरूर होगा। एक और प्रश्न हमारे साथ है, रविंद्र सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ और वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये प्रश्न पूछते हैं। रविंद्र जी फेसबुक से जुड़े हैं, यंग दोस्त हैं हमारे, ये सवाल है उनका।
रविंद्र जी ना नाम है, रविंद्र जी, रविंद्र जी ऐसा है, अन्याय कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के अन्याय होते हैं। एक अपने कर्मों के हिसाब के कारण हमको मिलते हैं, पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब के कारण, कोई मेरे से अन्याय कर रहा है, कोई कर रहा है मेरे से। और एक हमने किसी का जरूर थोड़ा बहुत बुरा किया है, थोड़ा बहुत हम भी अंदर अंदर उसके लिए गलत सोचते हैं तो अन्याय होता है मेरे साथ। तो अन्याय जब हो रहा है उसका हमको, मैं समझती हूँ, बदला नहीं लेना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए। आप एक किनारा कर सकते हैं लेकिन बदला नहीं लेना। अगर बदला लेंगे आप तो नुकसान आपका ही हो जाएगा। समय उनको जरूर सिखाएगा, आज नहीं तो कल उनको समय जरूर सिखा देगा, लेकिन आप अगर बदला लेंगे तो आप भी गलत, वो भी गलत, दोनों ही गलत हो गए ना, दोनों ही गलत हो गए तो कौन कम हुआ, कोई भी कम नहीं हुआ। इसीलिए आप बदला नहीं लीजिए, आप किनारा कर सकते हैं, किनारा कर सकते हैं लेकिन बदला नहीं लीजिए आप। आपको समय ऐसा आएगा जो आप देखेंगे एक न एक दिन जो आपके संग अन्याय कर रहे थे वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। आपके मन के अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरे संग ये अन्याय कर रहा है, लेकिन सोचिए कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक न एक दिन ये व्यक्ति सुधर जाएगा, आप उसके प्रति शुभ भावना रखिए, शुभ सोचिए आप उसके लिए, भला सोचिए, बोलिए तेरा भला हो कोई बात नहीं, तू ऐसा कर रहा है कर, लेकिन तेरा भला मैं करूंगा। कोई चोट लगाए तो लगाने दो, फिर भी आप क्या करो उसका भला करो, उसके प्रति शुभ सोचो। चोट लगाने वो तो लगाएगा ही, उसका काम ही ऐसा है ना, लेकिन हमारा काम है उसके लिए शुभ सोचो। जब आप शुभ सोचेंगे ना उसके लिए, तो देखेंगे जो आपके साथ अन्याय कर रहा है ना, वो देखेगा मेरा, मैं उसके साथ इतना अन्याय किया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं करता है मेरे साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं करता है, तो अपने आप सुधर जाएंगे। ऐसे कई लोग हमारे पास आए हैं, हमारे पास जो उनका यही प्रश्न था, हमारे संग ऐसा अन्याय हो रहा है, हम क्या करें। उनको ये सिखाया गया, आप शुभ भावना रखो, आप किनारा कर लो उनसे, परंतु बदला नहीं लो कि वो भी अन्याय कर रहा मैं भी करूं, तो दोनों हाथ एक जैसा हो गया ना, तो लड़ाई हो जाएगी और ये अन्याय बढ़ जाएगा। इसलिए साइड हो जाओ, पर अन्याय का बदला अन्याय से नहीं लेकर के शुभ भावना से लो, शुभ भावना, शुभ सोचो उसके लिए, कोई बात नहीं, तेरा भला हो, तू करता जा। कहते हैं बुरा करने वाले बुराई किए जा, बुराई के बदले क्या करो हम दुआएं दिए जाओ, वो बुराई कर रहा मैं उसको दुआ देता जाओ, तो क्या होगा, अपने आप वो आत्मा बदल जाएगी, सुधर जाएगी, सीख जाएगी। तो दुआ देने का काम सीख लीजिए आप, तो देखिए कितना आपका भला हो जाएगा। तो बस आप सोचिए मुझे उसका क्या करना है, रविंद्र जी मुझे उसका भला कर, बस ठीक है। पसंद आई होगी मेरी बात, आज से दुआ देना सीखिए आप, दुआ करने वाले दुआएं दिए जा। बस कोई आपका बुरा कर रहा, आप दुआ देते जाओ, तब एक न एक दिन देखिए वो आप बदल जाएगा। ये प्रैक्टिकल बातें आपको सुना रही हूँ, कोई आपको ऐसा नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ये मैं अपने अनुभव की बातें बता रही हूँ आपको, आप करके देखेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कैसे बदल गया व्यक्ति। तो अन्याय का बदला अन्याय से नहीं, अन्याय का बदला प्रेम से लेना है, दुआ से करना है, शुभ भावना से करना, ठीक है। अच्छा
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। मैं अक्सर किसी ट्रक के पीछे लिखा हुआ मैंने देखा है, लोग कहते हैं उस पर लिखा हुआ होता है कि बुरी नजर वाले तेरा भी भला, कि जब कोई बुरा भी सोचता है तो उसके लिए भी जब आप अच्छी चीज कहते हैं, कुछ आप अच्छी भावना रखते हैं, तो इन जनरल अच्छा ही होता है, आपको भी उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपने जैसे कहा ये शुभ भावना रखनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और बहुत सारे दोस्त आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर फीडबैक्स भी लिख रहे हैं कि आपने बहुत वंडरफुल आंसर्स दिए हैं, ऐसा रविचंद्रन जी लिख रहे हैं स्क्रीन पे, उनका मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुकन्या महाजन जी भी कहते हैं थैंक यू दीदी, वेरी गुड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ऐसा कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न और भी हैं जो मैं सारे प्रश्न नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, और दीदी ने आप सभी के प्रश्नों को आज उत्तर देने की कोशिश की है। जिन प्रश्नों का उत्तर हम आज नहीं ले पाए हैं उनको हम करके प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्रश्न हमारे सामने रखे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाए, बट दोस्तों हम एक ही घंटे के लिए प्रोग्राम करते हैं, कोशिश करेंगे कि आगे इस पर विचार किया जाए। आपके फीडबैक्स के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी की तरफ से मैं शीला दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ जो खास आज हमारे साथ गुवाहाटी से लाइव जुड़े दीदी, और उनके स्पिरिचुअल विजडम से हम सबको लाभान्वित किया, हम सबको गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीदी मैं अभी आपसे अनुरोध करता हूं कि जाते जाते हमारे दोस्तों को आखिरी 3-4 मिनट के लिए आप मेडिटेशन का लाभ दिलवाएं, आपके सानिध्य में सभी लोग मेडिटेशन कर सकें और आप हमें मेडिटेशन में गाइड कर सकें हमारे दोस्तों के लिए।
हाँ जी, मेडिटेशन करने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, एक तो आप सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी करके बैठिए, दूसरा आप आंखें बंद कर लीजिए और मैं कुछ शब्द आपके सामने बोलती जाऊंगी। उन शब्दों पर आपको दोहराना नहीं है, उसका अनुभव करने की कोशिश करिए। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा धर्म है, मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा है, जैसे मैं ज्योति बिंदु हूं, निराकार हूं, बड़ी सूक्ष्म हूं, ठीक उसी तरह से परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु है। वो शांति के सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर से मैं अपना मन लगा रही हूं। शांति के सागर परमात्मा इस दुनिया से परे, जिसको हम ब्रह्म लोक कहते हैं, जिसको ब्रह्मांड भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है, उस शांति धाम के परमात्मा निवास करते हैं और हम सब का भी जो असली घर है, जहां से हम इस सृष्टि नाटक पर पार्ट बजाने के लिए आए हैं, हम सब का भी घर ये शांति धाम है। एक न एक दिन ये शरीर छोड़कर हम आत्माएं भी अपने घर से आए तो घर में ही जाना है, इसलिए कर्म करते हुए हर समय ये अभ्यास करिए कि मैं एक शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं आत्मा हूं, और जिसको भी देख रहा हूं, जिससे भी मैं बात कर रही हूं, वह भी एक आत्मा है और वह आत्मा इस शरीर के दो भ्रुकुटे के बीच में निवास कर रही है। बस आत्म चिंतन करिए आप, और आत्मा का चिंतन करते करते हमारा मन उस परमात्मा में लगेगा, जैसे बिजली की तार का कनेक्शन तार से जुड़ा जाता है, तो परमात्मा से हमने अपने मन की तार जोड़नी है। अब जब मन की तार हमारी अब जुड़ गई है, तो उससे हमें शांति का अनुभव हो रहा है। प्रेम का अनुभव हो रहा है, बस ये अनुभव करते जाइए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। धीरे धीरे ये अभ्यास आप करेंगे, आज जैसे आप अनुभव जरूर कर रहे होंगे, इस 2 मिनट के साइलेंस के अभ्यास में आपको जरूर शांति का अनुभव हो रहा होगा। आप इस अभ्यास को कायम करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।